नहमिया अध्याय नौ, अध्याय नौ पद एक। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इसराइली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। ये एक सजीव दृश्य जैसा है। सब लोग इकट्ठे हुए, वे उपवास कर रहे थे, वे टाट पहने हुए थे। टाट खुरदुरा और चुबाने वाला होता है, उस पर धूल जमी थी। शोक करने की एक प्रथा, मुंह पर थोड़ी धूल लगा ले तो चेहरा दुखी दिखाई देता है। अध्याय नौ पद दो और तीन। तब इसराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत करते रहे। क्या आप उनके चौथे पहर के दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? पवित्र शास्त्र का पढ़ा जाना और चौथे पहर भी परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते रहें। हम आधे घंटे या एक घंटे में ही आराधनालय में कुर्सियों पर बैठे तक जाते हैं और हिलने डुलने लगते हैं, परंतु देखिए, ये लोग परमेश्वर के वचन का पढ़ा जाना चौथे पहर तक खड़े हुए सुन रहे थे और आराधना कर रहे थे। यदि आज ऐसा किया जाए तो ऐसा संभव नहीं। अध्याय नौ पद चार से लेकर छह तक। लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंतकाल तक धन्य कहो। तेरा महिमायुक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे हैं। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की सुरक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। परमेश्वर की महिमा, महानता, सामर्थ को स्वीकार करना। तू ही ने स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग को बनाया। तू सब चीजों से ऊपर है। तूने ही संसार को बनाया और रक्षा करता है। पौलुस कुलुसियों की पत्री में यीशु के बारे में कहता है, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिर्जी गई है और उसी में स्थिर है। ये जगत यीशु मसीह की शक्ति से एक साथ स्थिर रहता है। कोलंब के बिजली के नियम के अनुसार सकारात्मक ध्रुव एक दूसरे का विरोध करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो चंबुकों के समान ध्रुवों को पास लाइए और देखिए कि किस प्रकार एक दूसरे से दूर हटते हैं। अतः सिद्धांत यह है कि विपरीत ध्रुव आकर्षित होते हैं और समान ध्रुव विकर्षित होते हैं। आकर्षण और विकर्षण के इसी सिद्धांत पर एटम बॉम्ब बनाया गया है। इस प्रतिक्रिया में असीम शक्ति होती है। यदि भौतिक संसार विकर्षण की इस शक्ति का शिकार बन जाए तो विनाश आ जाएगा, परंतु इसके विपरीत एक और शक्ति है जो इस विकर्षण को रोकती रहती है। ये शक्ति संसार को थामे हुए है। वैज्ञानिक इसे परमाणु गोंद कहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को थामे रखने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर जो अणुबम्ब डाला गया था, उसकी विखंडनशील सामग्री केवल 10 पैसे के सिक्के के बराबर थी, परंतु जब सकारात्मक अणुओं को प्रतिक्रिया करने का अवसर मिला तब नाश का तांडव ढह गया। यहां वे लोग कह रहे थे, ओ परमेश्वर, तूने स्वर्ग और स्वर्गों को बनाया, तू अति महान है और तेरी शक्ति सबसे ऊपर है और सभी की रक्षा तू ही करता है। तेरे द्वारा सब चीजें रची गई और बनी रहती है, तेरी शक्ति सर्वपरि है। फ्रांसिस शेफर ने कहा कि आज हम मसीहों को केवल परमेश्वर शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों के मन परमेश्वर के बारे में अनेक धारणाएं हैं। जब आप कहते हैं परमेश्वर, तब सुनने वाला परमेश्वर को उसी रूप में ग्रहण करता है जिस रूप में उसने परमेश्वर को अपनी समझ में बैठाया हुआ है। परमेश्वर के विषय उसकी अपनी समझ आपकी समझ से अति भिन्न हो सकती है। एक ऐसा मनुष्य भी होता है जो अपनी कुंडली में ध्यान करके सोचता है कि वही परमेश्वर है, या कोई ऐसा मनुष्य भी है जो गुलाब के फूल को सूंघकर कहता है ये परमेश्वर है। इसलिए यदि आप उसे कहें परमेश्वर, तो सोचेगा कि आप गुलाब के फूल के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए फ्रांसिस शेफर का कहना है कि जब हम अपने परमेश्वर के बारे में कुछ कहें तो हमें कहना चाहिए परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। यहूदी अपने परमेश्वर के लिए ऐसी अभिव्यक्ति इसलिए कर रहे थे कि उनके चारों ओर अनेक देवी देवताओं की उपासना की जाती थी जिन्हें वे ईश्वर कहते थे, जैसे बाल, मालोक, मामोन आदि। अतः जब उन्होंने यहोवा की आराधना आरंभ की तब उन्होंने स्पष्ट अंतर दर्शाया। अपने परमेश्वर यहोवा को सदा धन्य कहो, तेरा महान नाम धन्य है, सारी महिमा और स्तुति में ऊंचा है, क्योंकि ओ यहोवा या यहोवा तू ही ने स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी समुद्र और जो कुछ उसमें है सबों को तू ही ने बनाया। वे लोग मूसा की व्यवस्था और उत्पत्ति पढ़ते रहे थे। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति के प्रथम कुछ अध्याय पढ़ते रहे, उन्होंने स्वीकार किया कि परमेश्वर ही ने सब कुछ बनाया जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है। नए नियम में प्रेरितों के काम के चौथे अध्याय में महासभा द्वारा प्रेरितों पर लगाए गए प्रतिबंध, यीशु के नाम से तुम कुछ मत बोलना के विषय के बारे में पत्रस और यूहन्ना प्रेरितों से चर्चा कर रहे थे। तब उन्होंने प्रार्थना की और कहा, प्रेरितों के काम चौथा अध्याय 24 पद, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। शायद उन्होंने नहमिया की इस प्रार्थना को याद किया, तू ही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और उसके सब गण, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, समुद्र और जो कुछ उसमें है, और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना उसी को दंडवत करती है। स्वर्ग और उसके सब गण स्वर्ग दूतों को कहा गया है जो उसकी आराधना करते हैं। इसलिए जब वे कहते हैं कि स्वर्ग की समस्त सेना, तो इसका अर्थ है वे स्वर्ग दूत जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। उनके कहने का अर्थ यह था कि परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को बनाया है। अध्याय 9 पद 7 और 8, हे यहोवा, तो वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हितियों, एमोरियों, परिजियों, यबूसियों, गिरगेशियों का देश दूंगा, और तूने अपना वो वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धर्मी है। ये साबित करने के लिए कि परमेश्वर ने अब्राहिम से वायदा किया था, परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया। हम यहां प्रतिज्ञा किए हुए देश में हैं, क्योंकि तू धर्मी है। अध्याय 9 पद 9 और पद 10 में, फिर तूने मिस्र से हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी, और फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए। वे अपने इतिहास को याद कर रहे थे, वे इतिहास पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। वे सुबह से शाम तक व्यवस्था की पुस्तक अर्थात बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकें पढ़ते रहे। अध्याय 9 पद 11 में, और तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा धो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। ये पद उस मत का खंडन करता है जो ये मानता है कि इसराइली लाल सागर की अपेक्षा नरकट सागर पार करके आए थे, जिसकी गहराई केवल 18 इंच थी। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन झूठे लोग आंकड़े तैयार कर लेते हैं। अध्याय 9 पद 12 और 13, फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सिनाई पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। उसने उन्हें उचित न्याय, सच्ची व्यवस्था, अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। अध्याय 9 पद 14 से लेकर 16 तक, और उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी, और उनकी भूख मिटाने के आकाश से उन्हें भोजन मन्ना दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ, परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया। ये स्वीकरण है, परमेश्वर तू विश्वास योग्य है, तूने अपनी वाचा को पूरा किया, लेकिन हमारे पुरखे हार गए। हार जाना सदा हमारा काम होता है। हम बहुत समय परमेश्वर को दोष देना चाहते हैं। परमेश्वर धर्मी है, विश्वास योग्य है, वो अपना कहा पूरा करता है। हम ही है जो चूक जाते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चूकता है, परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया। अध्याय 9 पद 16 और 17, और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच में किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको ना त्यागा। क्या ये अच्छा नहीं? वे कहते हैं, मैं पुराने नियम के परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो क्रोध, न्याय और बदला लेने वाला परमेश्वर है, मैं नए नियम के परमेश्वर से प्रेम करता हूं। ऐसा समझते हैं जैसा धर्मशास्त्र में दो परमेश्वर हो। कदापि नहीं, एक ही परमेश्वर है, और वो पुराने नियम में प्रकट किया गया, महान क्षमा करने वाला, दयावंत, क्रोध करने में धीमा, और उसने उनको ना त्यागा। यही बात पौलुस नए नियम के परमेश्वर के लिए कहता है, ओह कितना अनुग्रहकारी, दयावंत, बुद्धिमान और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अध्याय 9 पद 18। वरन जब उन्होंने बछड़ा डालकर कहा कि तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया। यहां फिर इशारा है परमेश्वर विश्वास योग्य है, जबकि वे नहीं थे। उन लोगों ने बछड़ा ढालकर बनाया। अध्याय 9 पद 19 और 20। तब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, और ना रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तू उन्हें समझाने के लिए अपनी आत्मा को जो भला है दिया। हम चूक जाते हैं तो भी हमारा परमेश्वर कितना भला है। हम अधिकतर अपने हृदयों को कड़ा करते हैं तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहकर विलंब से क्रोध करते हुए हमारे साथ दया और अनुग्रह का व्यवहार करता है। उसने उनको नहीं त्यागा, वो अपने लोगों को नहीं त्यागेगा जबकि उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया और उसका त्याग किया है, तो भी वो विश्वास योग्य है, वो उन्हें नहीं त्यागेगा। कितना महान है हमारा परमेश्वर। उन्हें समझ प्राप्त करने के लिए उसने अपना भला आत्मा दिया। अध्याय 9 पद 21 से 26 तक। और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनको पाँव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यूं वे हेशबोन के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। सो ये संतान जानकर उसकी अधिकारिन हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करें, और उन्होंने गढ़ वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों को और खुदे हुए हौदों के और दाख और जलपाई बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा खाकर तृप्त हुए और हर्ष पुष्ट हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया। ध्यान दे वे कैसे परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करते और लोगों की असफलता को स्वीकार करते हैं। ऐसा करना आवश्यक है। परमेश्वर तू धर्मी है, तू सही था, हम ही थे जो असफल हुए, हमने मुंह मोड़ा है, परंतु फिर भी वे अनआज्ञाकारी थे। अध्याय 9 पद 26 से लेकर 28 तक। और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया, इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वालों को भेजता रहा जो उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु जब जब उनको चैन मिला, तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे, इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिर कर तेरी दुहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। इसराइल देश के इतिहास का कितना सही वर्णन है। अध्याय 9 पद 29 से लेकर 31 तक। और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधे हटाते और न सुनते थे। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपनी आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और ना उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। ये सब कितना प्रभावशाली है, मैं प्रेम करता हूं। अध्याय 9 पद 32 और 33। अब तो हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भययोग्य ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहता है, जो बड़ा कष्ट अश्शूर के राजाओं के दिन से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं, वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वो तेरी दृष्टि से थोड़ा न ठहरे। तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है। ये स्वीकार करना आवश्यक है, परमेश्वर तू सब बातों में भला है। बहुत से लोग परमेश्वर के न्याय को बराबर चुनौती देते रहते हैं। एक प्रेमी परमेश्वर ये सब कैसा होने दे सकता है, या कैसा एक प्रेमी परमेश्वर मनुष्य को नरक में भेज सकता है, और अनेक चुनौतियां परमेश्वर के न्याय के प्रति। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर बहुत न्याय संगत और धर्मी है। लेकिन उस गरीब अफ्रीकन के बारे में क्या होगा जिसने यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना, जो इसी स्थिति में मर जाता है, उसका क्या होगा? परमेश्वर उसके साथ भी न्याय संगत और धर्मी रहेगा। हम उसकी चिंता ना करके अपनी चिंता करें। तुमने उसका वचन सुना है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। परमेश्वर उसके साथ जिसने वचन नहीं सुना न्याय संगत रहेगा, और तुम्हारे साथ भी कि तुमने वचन सुना है। वो धर्मी है और जो कुछ करता है उसमें न्याय संगत होता है। तूने सब भला ही किया है, पर हमने दुष्टता से काम किया है। अध्याय 9 पद 34 से 38 तक। और हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने ना तो तेरी व्यवस्था को माना है और ना तेरी आज्ञाओं और चेतौनियों की ओर ध्यान दिया है जिससे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और ना अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख, हम आज तक दास हैं। जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाएं, इसी में हम दास हैं। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है बहुत धन मिलता है, और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं। इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेविय और याजक उस पर छाप लगाते हैं। ये परमेश्वर की छवि है। परमेश्वर तू न्याय संगत रहा है, तू विश्वास योग्य रहा है, और तू कभी टला नहीं। हमने गलत किया, हम अपने देश में गुलाम हो गए, राजा हम पर प्रभुता करते और देश में उपज होने पर भी हमसे कर वसूल कर हमें लूटते हैं। अब परमेश्वर, हम तेरे साथ अपनी वाचा को दोहराते हैं, हम अपने संबंध सुधारते हैं और नई वाचा बांधते हैं और लिख लेते हैं। हम छाप लगाना चाहते हैं और इन लोगों ने छाप कर दी।